الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله یہ ایک دن کا جو پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس والسار شہر میں رکھا گیا میں اس پروگرام کے لیے جن جن بھائیوں نے محنت کی ان سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے ظہر کی نماز کے بعد پورے شہر میں چار جگہوں پر مستورات کے پروگرام ہوئے اور ہر ہر مجلس میں الحمدللہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں پروگرام میں پہنچی عصر کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا اور یہ اس ایک دن کے پروگرام کی اس مرتبہ کی آخری مجلس ہے عصر کی نماز کے بعد مجلس میں ہم نے کچھ سوالات کیے تھے ہمارے نوجوان بھائیوں سے تو جواب ایسے ہی آ رہے ہیں جو جنرل دوسری جگہ پر بھی یہی حال ہے وڈیلوں سے والیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی ہمارے دین کی جو بنیادی معلومات ہے پراتھمک جانکاری جس کو کہتے ہیں وہ مال حاصل نہیں ہے جتنے لوگ موجود تھے ان سے میں نے سوال کیا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نبی اور رسول کی صحیح اور پوری ویاکھیا تعریف کوئی نہیں بتلا سکا اس سے بڑی اور کیا دکھ کی بات ہو سکتی ہے آج جو اسلام کی بیسک پرائمری جانکاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بتلاؤ ہم ہمارے بچوں کو اسکول میں کالج میں ہائی اسکول میں بھیجتے ہیں اور ٹیوشن کے لیے اتنے سارے رقم کا خرچ کرتے ہیں لیکن یہ دین جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے اس کے لیے ہم لوگ کوئی فکر نہیں کرتے تو تمام والیوں سے اور تمام ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ہارٹلی ریکویسٹ کرتا ہوں دل سے میں آپ کو وننتی کرتا ہوں کہ آپ کچھ کتابیں بکس چوپڑیاں لا کر کے گھر میں رکھو ایگزامپل تعلیم الاسلام ہے، نماز کے مسئلے مسائل کی کتاب ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سیرت میننگ حضور کا جیون چریتر، لائف اسٹائل، اسٹیٹ آف دا لائف، وہ گھر میں لا کے رکھو، روزانہ اس کا تھوڑا تھوڑا وانچن کرو، اس کو پڑھو، تاکہ ہم کو پتا چلے کہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے. بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی حالت دین کے بارے میں ایسی ہے کہ وہ ایک مسلمان، ایک لطیفہ ہے یعنی جوکس ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک مسلمان تھا، اس نے کسی نان مسلم کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو زبردستی زمین کے نیچے گرا دیا، اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا اور ہاتھ میں چھری لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمان بن جا، اسلام کو فالو کر لے، اسلام کو مان لے. حالانکہ ہمارا دین ایسی زبردستی سکھلاتا نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی پر زبردستی نہیں کرنے کی. جس کو مسلمان ہونا ہو، ہوئے، نہیں ہونا ہو، نہیں ہوئے، جنت بھی کھلی ہے، جہنم بھی کھلی ہے، جس کو جہاں جا کے پڑھنا ہو وہاں جا کے پڑھے. تو اس نے، ایک مسلمان نے نان مسلم کو زمین پہ گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں چھری لے کر بائی فورس کہتا ہے زبردستی تو مسلمان ہو جا. تو وہ نان مسلم کیا کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو مسلمان کو لائٹ ہوئی کہ اسلام کیا ہے وہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں صرف زبردستی کر رہا ہوں مسلمان بن جا مسلمان بن جا. یہ جوکس ہے لیکن حقیقت ہے کہ آج جنرل میں بہت سنبھل کے کہوں تو 90% مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اسلام کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام سیکھنے کی اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اثر کے بعد مفتی محمود صاحب کا، ابھی مفتی معاذ صاحب کا، بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی، موبائل اور انٹرنیٹ کا مس یوز نہیں کرنے کا، بہت کام کی باتیں ہیں. میں اس وقت پر کچھ ہسٹری کہ ہمارا ہندوستان میننگ انڈیا، بھارت، اور ہمارا مذہب اسلام، ان دونوں کے درمیان میں سمبندھ، تعلق کب سے ہیں اور کیسا ہے. یہ میرے اس بیان کا تیسرا حصہ ہے جو میں آج یہاں پورا کروں گا. انٹرنیٹ کے اوپر میری ویب سائٹ پر آپ کو اس کا پہلا حصہ سننے کو ملے گا، میں آج اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا. پھر دوسرے حصے میں سے بہت تھوڑی سی باتیں، اسی سیٹرڈے کو دلی میں رام لیلا میدان میں جہاں 6 لاکھ انسانوں کا مجمع تھا میں نے سنائی ہے، وہ بھی آپ کو نیٹ پر ملے گی. اور آج میں اس ٹاپک کو پورا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہندوستان اور اسلام، ان دونوں کے درمیان کے اندر کیا تعلق ہے اور کب سے دونوں کے درمیان میں سمبندھ ہے. तो पहली एक बात मैं आपको ये अहम समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम के बारे में ये मत सोचना, जनरल जो हमारी सोच है वो क्या है कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ। हम ये समझते हैं कि इस्लाम की शुरुआत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये हमारी सोच गलत है। जो आदमी भी ऐसा सोचता हो वो अपनी सोच को पहले साफ कर ले। इस्लाम कब शुरू हुआ? बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम, इस्लाम की शुरुआत। तो देखो, इस धरती पर, पृथ्वी और जमीन पर इंसान तो लास्ट में आए, और इंसान से पहले इस धरती पर जिन्नात रहते थे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो मखलूक बनाई है उसमें तीन बड़ी बड़ी मखलूक है जिसको हम जानते हैं। एक बड़ी मखलूक है फरिश्तों की, दूसरी बड़ी मखलूक है जिन्नात, और तीसरी बड़ी मखलूक है इंसान। तो इस दुनिया में इंसान के आने से बहुत पहले जिन्नात रहते थे और फरिश्ते आते जाते थे। इसीलिए एक बात मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग आजकल बापुओं के पास जाके कहते हैं कि मेरे घर में जिन्नात घुस गया, उसको निकालने की तावीज दो। तो मैं कहता हूँ कि जिन्नात हमारे घर में नहीं घुसा है, हम जिन्नात के घर में घुस गए हैं। इसलिए कि ये दुनिया में पहले जिन्नात रहते थे, इंसान तो बाद में आए, हम आके उनके घर में घुस गए। तो मैं इस्लाम की हिंदुस्तान के साथ जो हिस्ट्री आपको बताऊंगा वो इंसानों से बताऊंगा, जिन्नातों से नहीं बताऊंगा। इसलिए कि वो हिस्ट्री बताने में मुझे आपको बहुत सी और बातें समझानी पड़े, वो इंशाल्लाह कभी और मौके पर समझाएंगे। तो इंसान से इस्लाम की जो शुरुआत हुई, तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम है। इंसानों में सबसे पहले नबी हजरत आदम है, और वही पहले इंसान भी है। इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहि सलाम, और वही पहले नबी भी है। और आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उसी जमाने से इस्लाम भी दुनिया में आया। तो इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, नया धर्म नहीं है। जब से इंसान, मानवता इस जगत में आई, इस दुनिया में आई, तब से इस्लाम भी दुनिया के अंदर आया। इसीलिए इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना मजहब अगर कोई होवे तो वो इस्लाम मजहब है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराने मजहब को हम फॉलो करते हैं, उसको हम मानते हैं। मैं हमारे भाइयों से कहूंगा कि जरा इस तरफ हो जाए, नए आने वाले साथियों को सहूलत हो जाए। वहाँ दरवाजे के पास भीड़ हो गई है और इस कोने में थोड़ी जगह है, ये लेफ्ट साइड में, जरा हरकत करके इधर आ जाइए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आ जाइए इस तरफ, ताकि उस तरफ सहूलत हो जाए। तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उनके साथ ही इंसानों के लिए दुनिया में इस्लाम आया। हर जमाने में, हर नबी के दौर में थोड़ी थोड़ी बातें बदलती रही, बाकी जो बेसिक बातें हैं, उसूल, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, गुजराती में सिद्धांत कहते हैं, ये सिद्धांत और उसूल हर जमाने के अंदर एक रहे। और वो क्या रहे? अल्लाह एक है। पूरे ध्यान के दिल में बिठा लो, इस्लाम की बात है, अल्लाह एक है। और जिस जमाने में जो नबी आए वो नबी सच्चे हैं, और सबसे अखीर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लिए आए, जिनकी बातों पर हम अमल करते हैं। और अल्लाह ने जितने नबी भेजे, तमाम नबी के ऊपर हम ईमान लाते हैं, चाहे हमको नाम मालूम हो के नाम मालूम न हो। अल्लाह ने जितनी किताब उतारी आसमान से, उन सब किताबों पर हम ईमान लाते हैं। चार किताब का नाम तो हम जानते हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। दूसरी किताबों के नाम हम शॉर्ट में जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, सही से उसको कहते हैं। अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं उनको भी हम सच्चा मानते हैं, मरने के बाद जिंदा होने को भी हम सच्चा मानते हैं, जन्नत को भी सच्चा मानते हैं, जहन्नम को भी सच्चा मानते हैं, पुल सिरात को भी सच्चा मानते हैं, हिसाब किताब कयामत के दिन होगा उसको भी हम सच्चा मानते हैं। ये उसूल के लगे प्रिंसिपल सिद्धांत, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। चेंजिंग आएगी तो किसमें? छोटे छोटे रूलिंग में तब्दीली आएगी, जैसे कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी कि कपड़े के ऊपर पेशाब लग जावे तो पानी से धो डालने का तो कपड़ा पाक हो जावे, ये हमारे लिए आसानी है। और हमसे पहले जो नबी थे दुनिया में, उन नबी के जमाने में ऐसा भी एक जमाना आया कि कानून ऐसा था कि यहाँ अगर पेशाब लग गया तो कपड़ा काट डालने का, धो ही नहीं सकते उसको, सीधा काट ही डालने का। वो फैशन है ना, वो उसी जमाने की है। आजकल वो पैंट कटी हुई पहनते हैं ना लोग, मैं कहता हूँ पहले जमाने में बेचारे गरीब लोग फटेले कपड़े पहनते थे, अब करोड़ों पति लोग फटेले कपड़े पहनते हैं। तो बात अल्लाह, कितना डेंजर गुना है, नियत करके जाओ कि इंशाल्लाह ऐसी पैंट नहीं पहनेंगे जो कटेली हो फटेली हो। मुसलमान तो जरा अच्छे कपड़े में रहे, बाज मरतबा बाज नौजवान आते हैं ऐसी पैंट पहन करके, तो मैं उनको कहता हूँ भाई कड़की हो ने तो मैं तुझे पैसे गिफ्ट में दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसी फटेली पैंट मत लेना, वरना लोग कहेंगे कि मुसलमान इतने गरीब हो गए कि फटेली पैंट पहनते हैं। तो है ऐसे छोटे छोटे रूल कायदे बदलते रहे, बाकी इस्लाम के जो सिद्धांत है वो हर जमाने में एक ही रहे, सेम कयामत तक। इसलिए ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो कि इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, जब से दुनिया में इंसान आए तब से इस्लाम आया, और कयामत तक इंशाल्लाह इस्लाम बाकी रहेगा। और सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, और वही सबसे पहले नबी है, तभी से इस दुनिया में इस्लाम आया। अब आप आगे की बात सुने, हिस्ट्री दीजिए। ये हमारा हिंदुस्तान है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत अच्छे मुल्क में हम पैदा हुए, पैदाइश अपनी गांव हुई, बहुत अच्छी जगह हुई, मौत की तमन्ना मदीना की करने की कि अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए, कहाँ पर? मदीने पाक में। लेकिन जहाँ पैदा हुए बहुत अच्छी जगह पैदा हुए, हिंदुस्तान में। अभी मैं आपको बतलाऊंगा, मैं ये सब रेफरेंस लेके आया हूँ कि हिंदुस्तान नाम कैसे बना, वो भी अभी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम जब जन्नत से अल्लाह ने उनको दुनिया में उतारा, तो हमारे भारत में हिंदुस्तान में अल्लाह ने उनको उतारा था। यहाँ एक सुरनदीप नाम का टापू आयरलैंड, जिसका अब लेटेस्ट नाम है श्रीलंका। ये श्रीलंका जो है ना, पहले हमारे देश का एक हिस्सा था, उसको सुरनदीप कहते हैं। वहां पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है बूज देवाउजाल। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में सुरनदीप में बूज नाम के पहाड़ के ऊपर उतारा था। और ये बात बहुत से सहाबा मर्द और औरत से अल्लाह ने ये रिवायतों में आई है, सहाबा से भी और सहाबी औरतों से भी ये बातें मनकुल है। अब इससे एक बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के नबी दुनिया में आते हैं तौहीद लेकर के, तो सबसे पहले इंसानों को तौहीद अगर मिली है तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर मिली है। और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो गोया के नबी के ऊपर अल्लाह का फरिश्ता आता है, हजरत जिब्रेल आते हैं। तो इंसानों के लिए हजरत जिब्रेल अमीन अगर सबसे पहले आए तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आए। तो सबसे पहले इंसान हिंदुस्तान की जमीन पर, सबसे पहले नबी हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर, और हजरत जिब्रेल अमीन इंसानों के लिए वही लेकर के आए तो वो भी सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आए। देखो हमारा रिश्ता इस्लाम का हिंदुस्तान से मैं बतला रहा हूँ, ताकि हमको यकीन हो जावे कि हम बाड़ूती घर में नहीं रहते हैं। और लोग जो हमको ये इधर उधर भेजने की बात करते हैं ना, कहते हैं कि हमारा तो परमानेंट बाप दादा के जमाने का कब्जा है यहाँ का, हमको यहाँ काम चला और रहने नहीं आए हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको सुना रहा हूँ। तो हजरत आदम अलैहि सलातु व सलाम की जो पीठ मुबारक थी, उस पीठ मुबारक में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक था। ये बात तो हजरत थानवी ने भी, हमारे दूसरे बुजुर्गों ने भी लिखी है कि हुजूर का नूर मुबारक हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर के आपके अब्बा हजरत अब्दुल्लाह तक, एक के बाद एक एक इंसानों के पीठ में ट्रांसफर होता रहा, और अखीर में हजरत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा, उनकी पीठ से हुजूर की अम्मा हजरत आमिना के पीठ पेट में आया, और फिर हुजूर का नूर मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया में आया। तो हुजूर का नूर मुबारक जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर आया, क्योंकि पहले इंसान हिंदुस्तान में आए और उनकी पीठ में हुजूर का नूर मुबारक था, तो सबसे पहला हुजूर का नूर मुबारक वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आया। अब आप अंदाजा लगाओ कि हम कितनी पवित्र और पाकीज़ा जमीन के ऊपर जो है रहते हैं। इसके बाद ये बात भी समझना कि इस्लाम की शुरुआत हुई हिंदुस्तान से और इस्लाम पूरा हुआ है अरबस्तान में जाकर के, इब्तिदा हिंदुस्तान से और पूरा हुआ कहाँ पर, मक्के मुकर्रमा में अरबस्तान में। और वही बात अल्लाह ने कुरान में फरमाई, फरमाया के अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا اور پورا کر دیا۔ تو اسلام شروع ہوا ہندوستان سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اور مکمل اور پورا ہوا عربستان کی سرزمین پر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب آگے کی بات سمجھو, इंसान दुनिया में आया तो जरूरत लेकर के आया। इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है, पीने की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है। और आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की हुई, कितनी? तकरीबन 1000 साल की। अपने को 60-70 साल की जिंदगी में इतनी सारी जरूरत पड़ती है, तो 1000 साल जो आदमी दुनिया में रहे उसको तो कितनी सारी जरूरत पड़े। तो पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और 1000 बरस वो दुनिया में रहे, तो 1000 साल में उनको बहुत सारी जरूरत पड़ी। और इंसान को जरूरत पड़ती है तो इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालता है। इसको कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। जरूरत पड़ती है तो आदमी बनाता है चीज को। प्रोडक्शन कब होता है? जब जरूरत पड़ती है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रोडक्शन का काम किया। तफसीर की किताबों में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आए तो अपने साथ हथौड़ा लेकर आए थे, इसलिए कि हथौड़ा, हथौड़ी की भी जरूरत पड़ती है। और साथ में चिमटा, यानी ये सणसी और चिपिया, ये भी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में से लेकर के आए थे। और यहाँ आकर हिंदुस्तान में उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रीज शुरू की, फैक्ट्रियां शुरू की, कारखाने शुरू किए। अब उस जमाने में जैसी भी फैक्ट्री रही हो, कोई जरूरत नहीं कि वे, जरूरी नहीं कि जैसे आज फैक्ट्री हो ऐसी फैक्ट्री बनी हो। आज से 50 साल पहले आप लोगों ने लोहारों को देखा कि नहीं दुनिया में, कि एक लोहार होता था, फिर वो अपने सामने वो आग को चूल्हे में जला करके उसमें लोहा लाल करता था, फिर उस पर हथौड़े मार मार करके उसको टेढ़ा सीधा करे, वो एक फैक्ट्री होती थी छोटी सी। तो आदम अलैहिस्सलाम की फैक्ट्री भी जैसी हो वैसी, लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में सनअत और हिरफत, यानी इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और चीजों को बनाने का कामकाज हिंदुस्तान से शुरू हुआ। आज हम कहते हैं कि यूरोप में ये क्रांति आई, गलत बात है। सारी दुनिया को इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन करने का तरीका सबसे पहले हिंदुस्तान वालों ने सिखाया, यहाँ से शुरुआत हुई। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ। हमने आसमान से लोहा उतारा, स्टील उतारा, लोखंड उतारा और उसमें लोगों के लिए फायदे रखे, और उसी स्टील और लोखंड में से अलग अलग किस्म की चीजें इंसानों के लिए बनाई जाती है। तो ये बात भी याद रखना कि इस दुनिया को इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और जितनी भी जो है चीजें हैं वो मिली सबसे पहले हिंदुस्तान से, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान में उतारा। आगे की बात सुनाऊं मैं आपको। ये सोना और चांदी जो है ना, पहले उसके चश्मे बहते थे, चश्मा मिली झरना जिसको कहते हैं, जैसे पानी का चश्मा होता है, झरनों पानी, इसी तरीके से सोने और चांदी के भी झरने थे, चश्मे थे। और आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आके अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह जमीन के ऊपर सोने और चांदी के चश्मे बहा दीजिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के ऊपर सबसे पहले हिंदुस्तान में सोना और चांदी के चश्मे जारी फरमाए। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर ये भी सबसे पहले हिंदुस्तान में आया, इसलिए तो हम भारत को कहते थे सोने की चिड़िया। फिर लोग लूट के ले गए उसको यहाँ से और दूसरी जगह, ये सब चीजें। सबसे पहले सोना और चांदी भी हिंदुस्तान के अंदर आया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने हिंदुस्तान में उतारा, लेकिन उनकी जो बीवी थी जिनका नाम माँ हव्वा है, उनको अल्लाह ने जिद्दा में उतारा था। जिद्दा जो है ना, अरबी शब्द है, थोड़ा थोड़ा अरबी भी सीख लो। अरबी में दादी नानी को जद्दा बोलते हैं, जद्दा, दादी को भी नानी को भी। और चूंकि तमाम इंसानों की दादी और नानी हजरत हव्वा है, और हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने जद्दा में उतारा था, इसीलिए उसका नाम बन गया जद्दा, यानी दादी का घर, नानी का घर, हजरत हव्वा का घर। और मैंने खुद जद्दा में देखा है, जद्दा शहर के बीच में एक छोटा सा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान पर बोर्ड लगा हुआ है, हुना मकबरा तो उम्मुना हव्वा, ये वो जगह है जहाँ हमारी दादी नानी हजरत हव्वा की कब्र है। तो अल्लाह ने उनको उतारा था जद्दा के अंदर। फिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई? दोनों की मुलाकात ऐसे हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से हज करने गए। सबसे पहला हज इस दुनिया में हुआ तो हिंदुस्तान से हुआ, पहला हज भी हिंदुस्तान से हुआ है। और आदम अलैहिस्सलाम ने 120 हज किए, उसमें से 120 के 20 हज हिंदुस्तान से जाकर के किए, मक्का जाकर के। तो जब पहली हज करने के लिए गए तो अरफात और मुजदलिफा के मैदान में माँ हव्वा से मुलाकात हुई। और अरफात का मीनिंग होता है पहचान और खान, और मुजदलिफा इज्तिलाफ के माने आते करीब होने के, नजदीक होने के, पास होने के। और माँ हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद सबसे पहले नजदीक और पास हुए मुजदलिफा के मैदान में, पहचान हुई अरफात के मैदान में, इसीलिए उसका नाम अरफात और मुजदलिफा बन गया। जब पहचान हो गई तो जहाँ शोहर वहाँ बीवी, ऐसा थोड़ा कि जहाँ बीवी वहाँ शोहर रह गए, ये तो उल्टी बात है कि जहाँ की बीवी वहाँ शोहर जा रहे, ये तो अपने गुजरात वालों ने उल्टी दुनिया चालू की है कि जहाँ से लड़की आवे अपने भी वहाँ चले जावे। वरना असली बात तो ये है कि जहाँ शोहर वहाँ लड़की आवे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मेरा वतन तो हिंदुस्तान है, तो हजरत हव्वा भी साथ में हिंदुस्तान आ गए, और दोनों आदम और हव्वा हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने लगे। तो अब औरतों को किसी मटेरियल से बहुत मोहब्बत होती है, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो हथौड़ा, चिटिया, कंसी ये लाए थे, और माँ हव्वा जब जन्नत से आई तो साथ में तंदूर लेकर के आई थी। तंदूर मीनिंग चूल्हा, जैसे अपने तंदूरी रोटी कहते हैं, तो तंदूर एक लोखंड का बना होता है, उसमें ये रोटी बनती है। और औरतों को सबसे पहले रोटी बनाने की फिक्र होती है। तो माँ हव्वा जब जन्नत से आई तो अपने साथ जन्नत का तंदूर लेकर के आई थी, और ये वो तंदूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो तूफान की शुरुआत उसी तंदूर से हुई। कुरान के अंदर भी है कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये जो तंदूर है जिसमें आग होती है उसमें से पानी निकले तो समझना कि अब अल्लाह का अजाब शुरू होने वाला है। और वो तंदूर जन्नत का तंदूर था जो माँ हव्वा जन्नत से लेकर आई थी, तो वो जन्नती तंदूर भी माँ हव्वा हिंदुस्तान लेकर के आए। और यहाँ आकर के दोनों मियाँ बीवी मजे से जिंदगी गुजारने लगे और उनकी औलाद चालू हुई। तो जो उनके बेटे पहले हुए जिसका नाम है काबिल, हकीकत में तो वो नाकाबिल था लेकिन नाम उसका है काबिल, और दूसरे बेटे का नाम हाबिल। फिर दोनों बेटे के दरमियान लड़ाई हुई, वॉर हुई, पूरी वॉर और लड़ाई का किस्सा भी कुरान में आया है। तो बास मुफस्सिरीन और तारीख और इतिहास लिखने वाले यूँ लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबिल और हाबिल दोनों के दरमियान के अंदर जो लड़ाई हुई वो लड़ाई भी हिंदुस्तान में हुई। इसलिए अपने यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत थे क्योंकि उसी दिन से शुरुआत हो गई थी। और अल्लाह मुझे और आपको माफ फरमाए, अपनी लड़ाई कहाँ होती है? मस्जिद मदरसे के संचालन में होती है सबसे ज्यादा। तो बस सबसे अल्लाह, ये तो खिदमत का काम है, इसकी कमिटी में रहने के लिए कभी झगड़ा करने का हो है, कभी इसके लिए मारामारी करने की हो है, नहीं, ये तो खिदमत है, मौका मिला करने का, नहीं मौका मिले तो तस्बीह पढ़ते रहने का, नमाज पढ़ते रहने का। تو حضرت حوا جنت سے تندور لے کر آئے تھے اور وہ تندور ماں حوا ہندوستان لے کر کے آئے, اور یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد کی قبر بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ایک نام ملتا ہے حضرت شیش علیہ السلام. تو حضرت شیش علیہ السلام کا لقب تھا ہبت اللہ. ہبت اللہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دین, اللہ کی نعمت, اللہ نے جو گفٹ دی ہو. تو شیش علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اجودھیا ہے, اجودھیا کو ہم صرف بابری مسجد سے پہچانتے ہیں, تو اجودھیا میں حضرت شیش علیہ السلام کی قبر موجود ہے, ایسا بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا کی بات میں نے آپ کو سنائی کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہندوستان آئے, پھر وہ اپنی بیوی حضرت حوا کو ہندوستان لائے, اور ہندوستان سے دنیا میں یہ انڈسٹری, صنعت, حرفت کی شروعات ہوئی, ساری دنیا کو یہ نعمت نصیب ہوئی. اور آگے کی عجیب بات میں آپ کو سناؤں, یہ ہندوستان نام کیسے بنا, یہ بھی ایک عجیب پوائنٹ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دسویں پشک میں, دسویں پشک کا میننگ میں تھوڑا آپ کو سمجھو, جیسے ابھی میں کسی کو پوچھوں تمہارے ابا کا نام کیا تو کہے یوسف, دادا کا نام کیا تو کہا موسیٰ, پر دادا کا نام کیا تو کہا عیسیٰ, یہ کرم گنتے جاؤ تو اپنے اوپر تک جاؤ نا, ابا دادا پر دادا سکڑ دادا آکڑ دادا اوپر تک جاؤ. اس کو اردو میں پشت کہتے ہیں, ایک دو تین چار ایسے نیچے بھی آتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے, بیٹے کے بیٹے, بیٹے کے بیٹے, ایسے دس سٹیپ نیچے آؤ تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی دس نمبر کی اولاد میں, اولاد 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 نیچے جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے, تو نوح علیہ السلام کے چند بچوں کے نام ملتے ہیں. چار بچوں کے نام بہت فیمس ہیں. ایک کنعان, جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی میں نہیں بیٹھا, پانی میں ڈوب کے ختم ہو گیا. تین بیٹے آپ کے ساتھ کشتی میں تھے, ایک کا نام حام, دوسرے کا نام سام, تیسرے کا نام یافیس. یہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے حام, سام, یافیس. تو یہ جو ایک بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا حام, تو اس حام بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے یوں فرمایا, بیٹا تم اس دنیا کے جنوب والے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے کھیتی باڑی کرنے کا کام کرو. تو خود اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے حام کو ہندوستان بھیجا کہ نوح نے فرمایا, بیٹا حام تم جاؤ ہندوستان کے علاقے میں اور یہاں جا کر کے کھیتی کرو. شاید اسی وجہ سے ہمارا دیش کھیتی پردھان دیش کہلاتا ہے. اس کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام نے رکھی تھی. اب بہت دھیان سے رکھنا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام حام, اس حام کے چھ بیٹے تھے, ان چھ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہند تھا. یہ خاص پوائنٹ یاد رکھنا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام حام اور حام کے بیٹے کا نام ہند. تو ہند تو حضرت نوح علیہ السلام کے پوترے کا نام ہوا, گرانڈ سن ان کے پوترے کا نام ہوا. اور اسی ہند کے نام پر سے ہمارے دیش کا نام ہندوستان بنا ہوا ہے, یاد رکھ لینا. ابھی ہم نے رام لیلا میدان میں یہ بات کہی تھی کہ اس دیش کا نام تو ہم نے دیا, تو پھر کون جو ہے اس ملک سے ہم لوگوں کو مٹا سکتا ہے؟ نام بھی باقی اور انشاءاللہ ہمارا وجود بھی باقی. تو ये आप लोगों को मैंने इतिहास की बात बतला दी, इसको खास ध्यान में रखना कि अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हाम और हाम के बेटे का नाम हिंद, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हाम को खेती करने के लिए हिंदुस्तान भेजा था। उन्होंने यहाँ आकर के अपनी जिंदगी गुजारी और उनसे बेटा जो हुआ हिंद, उसी के ऊपर से ये नाम बना है हिंदुस्तान। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो किसी और मौके पर इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। ये जो हाम थे, इन्होंने अपने अब्बा नूह अलैहिस्सलाम से ईमान और इस्लाम सीखा था, तो उन्होंने अपने बेटे हिंद को ईमान और इस्लाम सिखाया। तो इस तरह जमीन के ऊपर तो सब जगह ईमान इस्लाम तौहीद, बस यही सब बातें होती रहती थी। फिर बहुत बाद में चल करके यहाँ कुफ्र शिर्क की शुरुआत हुई। उससे आगे एक बात और मैं आपको सुनाऊं, अजीब और गरीब, ये गंगा नदी का नाम गंगा कैसे बना, ये हिस्ट्री भी बहुत अजीब और गरीब है। चुनांचे मेरे सामने ये जो मैं जेरोक्स लाया हूँ, ये हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात की पांचवी जिल्द सफा नंबर 108 की जेरोक्स लाया हूँ। हर चीज रेफरेंस से कहूंगा, कोई चीज हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम नहीं सुना हो तो नाम सुन लो, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुलूम देवबंद के फाउंडर थे, देवबंद मदरसे के स्थापक बानी। और इन्होंने 1857 में शामली के मैदान में अंग्रेजों के सामने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी थे। लेकिन आज दुख से मुझे ये बात कहनी पड़ती है, ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं कहता हूँ, मुसलमानों को भी कहता हूँ, हिंदुओं को भी कहता हूँ, मिनिस्टरों में भी कहता हूँ, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को कहता हूँ कि आज दुख की बात है कि हमें वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी यही नाम है, लेकिन जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया वो हीरो के नाम हमको मालूम नहीं है। एक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, इसको महात्मा गांधी बनाने वाले तो मुसलमान थे, इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाले हम मुसलमान थे, उनको कौन जानता और पहचानता था। तो 1857 में शायद अभी तो गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेजों के सामने शामली के मैदान में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके सब साथी लोग, वो हिस्ट्री पूरी अलग है। उनके भाई थे मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, वो देवबंद मदरसे के सदर मुदरिस थे। सदर मुदरिस का मतलब क्या, जो सब शिक्षक में टीचरों में हेड मास्टर, जिसको कहते हेड मास्टर, वो सदर मुदर्रिस हमारे मदरसे में कहते हैं। तो मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद मदरसे के हेड मास्टर थे, सदर मुदर्रिस थे, बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत ऊंचे दर्जे के पहुंचे हुए। एक दिन रात को अचानक घूम हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जब सुबह हुई तो पूरे देवबंद मदरसे के अंदर शोर हो गया, हजरत कहाँ चले गए, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े बुजुर्ग। रात को तकरीबन 12 बजे अपने पलंग से उठ करके चले गए थे। सब रो रहे हैं, हजरत कहाँ गुम हो गए, क्या हो गया। तो कोई ये समझा कि गंगोह गए होंगे मौलाना रशीद अहमद गंगोही के पास, चलो वहाँ खबर निकलवाओ, वहाँ से खबर आई तो यहाँ भी नहीं आए। कोई ने ये समझा कि हो सकता है कि वतन नानोता चले गए हो, वहाँ खबर निकलवाई, वहाँ भी पता चला कि नहीं है। एक अजीब माहौल हो गया पूरे देवबंद मदरसे में कि इतने बड़े अल्लाह के वली मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह घूम हो गए। फिर बहुत दिन उनको तलाश किया, तलाश करने के बाद जब वो मिले तो पता चला वो कहाँ गए थे। देवबंद से तकरीबन 40 माइल दूर पर गंगा नदी बहती है, 40 माइल दूर है गंगा नदी। तो हजरत मौलाना याकूब साहब नानोजी रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त नींद में से उठ करके गंगा नदी के किनारे गए, और अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने अजीब अजीब करामत दी होती है। तो चलते चलते गंगा नदी के किनारे चले, और चलते चलते जहां से गंगा नदी निकलती है वहां गए। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भूगोल में, इतिहास में, कि गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री पहाड़ से निकलती है। वहां गए हजरत, जहां से गंगा नदी चालू होती है, और वहां जाकर के हजरत 7 दिन तक रहे, और 7 दिन रह करके 7 दिन तक नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, रात दिन इबादत में लगे रहे। जब बहुत नमाजें पढ़ी, दुआएं की, कहां गंगोत्री में जहां से गंगा नदी निकलती है, और उसी गंगोत्री पहाड़ की वजह से इसका नाम गंगा नदी बना हुआ है। 7 दिन गुजरने के बाद हजरत ने इरशाद फरमाया मौलाना याकूब साहब नानोतवी ने कि मुझे कश्फ के जरिए से पता चला कि जहां से गंगा नदी निकलती है वहां पर किसी अल्लाह के नबी की कब्र है, या अल्लाह के किसी नबी की इबादत करने की जगह है, और नबी की कब्र और नबी की इबादत की बरकत से ये गंगा नदी बहती है, और इसीलिए तो गंगा नदी का पानी तमाम नदियों से अलग कलर का, गोल्डन कलर का। मैंने खुद देखा है गंगा की नहर को भी, गंगा नदी को भी, बल्कि इलाहाबाद के अंदर जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ गंगा का पानी एकदम अलग अलग पता चल जाता है, इसका पानी गोल्डन रंग का। ये जो उसका गोल्डन रंग है ये उस नदी की कब्र या नदी की इबादत की बरकत से है। ये गंगा नदी की असल, मैंने आपको इससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है कब से अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के पैगंबर लोगों का आना जाना हुआ। और आगे की बात सुनाओ, ये अब जो मैंने रेफरेंस निकाला है मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात छपे हुए हैं, उसके 5वें हिस्से का पेज नंबर एक्सेट मैंने निकाला है। हमारे हजरत फरमाते हैं पंजाब में एक जगह है सरहिंद शरीफ, वो तो बहुत सोने सुना होगा आपने से, ये सरहिंद पंजाब में एक जगह है, वहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह के वली की खबर है हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी रहमतुल्लाह अलैह। अपने को कम मालूम है, लेकिन तुर्की जाओ, अफगानिस्तान जाओ, तो वहाँ लोग बहुत जानते हैं सरहिंद को, इसलिए कि एक नक्शबंदिया सिलसिला है, मुजद्दिदिया सिलसिला, वो शुरू हुआ हिंदुस्तान में मुजद्दिदी सिलसिला हजरत शेख अहमद सरहिंदी, जिनको मुजद्दिद अल्फे सानी कहते हैं, उनके जरिए ये मुबारक सिलसिला शुरू हुआ। तो वहाँ सरहिंद जो पंजाब में है, बहुत दुख की बात है कि आजादी से पहले पंजाब में गांव-गांव में मस्जिदें होती थी, लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, और देश की आजादी की दास्तान इतनी खतरनाक है कि मैं अगर जो आपके सामने बयान करूं तो खून के आंसू से रोना आ जावे। आज मैं आपको सही बात कहूं कि हमारे भारत देश के हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग बने, बांग्लादेश अलग बने, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जमीयत उलमाए हिंद और दारुलूम देवबंद के अकाबरीन, सहारनपुर के अकाबरीन, इन्होंने बहुत खुल के विरोध किया था कि हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से टुकड़े हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना तो सिर्फ मॉडल है, उसके पीछे दूसरे लोग थे टुकड़े कराने वाले। मौलाना आजाद की इंग्लिश में किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, वो बुक आप सबको मैं पढ़ने की दावत देता हूँ। मौलवी हूँ, इंग्लिश किताब का रेफरेंस देता हूँ। आप लोग बहुत कहते हैं इंग्लिश बढ़ाओ, इंग्लिश बढ़ाओ, भण के क्या उकारा आप लोगों ने, मुझे कोई बतावे तो सही कौन सी हिस्ट्री सीख ली और क्या हासिल कर लिया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की इंग्लिश में किताब है, मेरे पास है,
उसने देखो उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है कि मोहम्मद अली जीना तो सिर्फ मॉडल था, पीछे कौन सपोर्ट करते थे देश के टुकड़े कराने में, वो अगर नाम आप लोग सुन लो ने तो आज जितने इकराम एहतराम से नाम बोलते हो ना सब गालियां देने लग जाओ कि ये जो आज देश के हीरो कहे जाते इन लोगों ने भागले कराए। तो 1947 के अंदर पाकिस्तान बना, टुकड़े हुए, हम नहीं चाहते थे। तो वहां पर 10,000 मस्जिदें थी, कितनी 10,000 मस्जिदें थी, उससे भी ज्यादा पंजाब और हरियाणा में, वो तमाम की तमाम मस्जिदें वीरान हो गए। मैं खुद गया हूँ हरियाणा पानीपत, मैंने अपनी आंख से देखा है, खुदा के घर में खड़ा हूँ, किसी मस्जिद में होटल चलती है, किसी मस्जिद के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, किसी मस्जिद के लिए सुना कि वहाँ थिएटर चलता है। हम एक बाबरी मस्जिद के नाम का क्या हुए, जमीयत उलमा हिंद ने तो पहले दिन से आवाज लगाई थी कि 1947 की 13 अगस्त को जो पोजीशन मस्जिदों की थी वो वापस मिलनी चाहिए। ऐसी 10,000 मस्जिदों के ऊपर गैरों का कब्जा है, लोग पाकिस्तान चले गए, मस्जिदें मदरसे सब उजड़ गए। तो ये सरहिन शहर पंजाब का, ये पूरा मुसलमानों का था। वहाँ हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, उसके करीब के अंदर ब्रास नाम का एक गांव है। उस ब्रास नाम के गांव के अंदर अल्लाह के नबियों की कब्र है, सरहिंद के करीब में ब्रास में। चुनांचे मैं अपनी बात सुनाने के बजाय अपने पीर साहब की बात सुनाऊं। हजरत फरमाते कि पंजाब में ब्रास नाम का एक गांव है, मैं भी वहां गया था, और बहुत बड़ा गांव है, वहां एक पहाड़ जैसा है, उसके चारों तरफ दीवार है, अब तो वहां मदरसा भी बन गया है, उस मदरसे का नाम भी है मदरसा गुलजारे अंबिया, नबियों का बाग, ये नाम भी उसका बहुत अच्छा रखा है जिसने भी रखा है। हजरत फरमाते हैं कि जब मैं गया तो एक साहिबे कश्फ बुजुर्ग भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुराकबा करके कश्फ के जरिए मुझे बताया कि यहाँ पर 6 नबियों से मेरी मुलाकात हुई, 6 नबियों से। और फिर मैंने उनसे पूछा तो बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कई 100 साल पहले कोई राजा का नाम बताया, उस राजा के जमाने के अंदर ये नबी हिंदुस्तान आए थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी कई 100 साल पहले। और फिर उनको पूछा नबियों से कि कौम ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया, तो कहा लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। तो कहा फिर क्या हुआ, कि अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को उलट करके अजाब में हलाक कर दिया। कहा हजरत फरमाते कि आज भी ब्रास को देखने से ऐसा लगता है कि कोई उल्टी हुई बस्ती हो, और बस्ती के लोगों ने ऐसा भी बताया कि कभी कभी यहाँ जो पहाड़ है उसकी ईंटें हटती है और उसमें से लाश नजर आती है। तो इस वाक्य से भी अंदाजा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर नदियों का आना तो बहुत पुराने जमाने से है। आगे हजरत कारी सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान का एक और हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, अजीब बात। देखो मैं आपको बताऊं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमको कुरान में अल्लाह ने एक तालीम दी, वो तालीम ये दी कि दूसरे मजहब के जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं उनको कभी गालियां मत दो, बुरा मत कहो, बल्कि उनके भी नाम अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। इसलिए कि अगर हम दूसरे मजहब के जो बड़े हैं उनको गालियां देंगे तो वो हमारे अल्लाह को गाली देंगे, तो हमारे अल्लाह को गाली देने का जरिया तो हम बने ना। अभी मुफ्ती माज साहब आपको माँ बाप की खिदमत के लिए सुना रहे, तो मैं आपको अर्ज करूँ, हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माँ बाप को गाली मत दो, अपने माँ बाप को गाली। अब माँ बाप को कौन गाली देवे, एकदम थर्ड दर्जे का होवे गाली देवे, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी माँ बाप को गाली देते हैं। कैसे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी के बाप को गाली दोगे
वो जवाब में तुम्हारे बाप को गाली देगा। तुम किसी की माँ को गाली दोगे, वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देगे। तो अपने माँ बाप को गाली देने का जरिया अपने बने ने, इसलिए किसी के माँ बाप को गाली नहीं देने की, अपने माँ बाप को भी गाली नहीं देने। इसी तरीके से दूसरे धर्म के जो बड़े हैं, धर्म गुरु, उनके लिए गाली नहीं बोलने की, बुरी बात नहीं बोलने की। क्योंकि अगर हम दूसरे धर्म के बड़े लोगों को गाली देंगे तो वो जवाब में हमको गाली देंगे। अब देखिए हजरत काई तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, अजीब बात फरमाते हैं कि मेरे दादा यानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे श्री कृष्ण जी या श्री रामचंद्र जी, तो उनका नाम लेकर कभी उनकी शान में गुस्ताखी न करो, बुरी बात मत बोलो, गाली मत दो। आगे हजरत फरमाते मुमकिन है यानी पॉसिबल है कि अपने जमाने में यही पैगंबर और सच्चे मर्द रहे हो, पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास कोई सनद नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि ये अल्लाह के वाकई नबी थे। अगर हमारे पास कोई सनद होती तो हमें उनकी नबूवत पर भी ईमान लाना जरूरी होता, जैसे हजरत मूसा और ईसा अलैहि सलाम की नबूवत पर हम ईमान लाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, इसलिए हम उनको नबी नहीं मानते, लेकिन उनका नाम अदब से लेना चाहिए। तो इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ इस्लाम का रिश्ता बहुत पुराना है। जब से इंसान दुनिया में आया तब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया, और सहाबा की बात तो बहुत बड़ी है कि सहाबा तो हिंदुस्तान में आए ही आए हैं, भोपाल में, कनौज में, मलबार में, भरूच जिले में, सिंध में सहाबा और ताबीन के आने का इम्कान है कि वो यहाँ आए थे और इनकी बरकत से हमारे हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की बहार आई। अब इस किस्से को खत्म करते करते मैं अपने नौजवान दोस्तों को एक अजीब बात सुनाऊं, आपकी जवानी के लाइन से, इसी हिस्ट्री के हवाले से। इस वक्त जो हमारे पूरे एशिया में इस्लाम नजर आ रहा है, दीन नजर आ रहा है, ये इस्लाम और दीन ये कुर्बानी है एक 16 बरस के नौजवान लड़के की। 16 बरस का एक नौजवान लड़का, टीनएजर लड़का, उसकी कुर्बानी की बरकत है। हम ताइफ का किस्सा तो सुनते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए थे, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, फरिश्ते आए हुजूर के पास और आकर के कहा हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमको इजाजत दीजिए, हम दोनों पहाड़ों को मिला दे रहे और पूरे पहाड़ पूरे ताइफ वालों का खीमा कर डाले। तो हुजूर ने क्या फरमाया था, छोड़ दो, माफ कर दो, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो उनकी औलाद ईमान लाएगी, उनकी नस्ल ईमान लाएगी। अब सुनो, उसी ताइफ में एक खानदान रहता था, कबीले बनू सकीफ, उसी सकीफ खानदान का एक 16 बरस का नौजवान जिनको मोहम्मद बिन कासिम सकफी कहते हैं, वो हिंदुस्तान के इलाके में दीन की दावत लेकर के आने वालों में वो भी शामिल है, और उनके जज्बात, उनकी कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ने इस पूरे मुल्क में ईमान इस्लाम को जो है जिंदा फरमाया, ताजा फरमाया। आओ मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह ने तुम्हारी जवानी के जज्बात को बहुत पाकीजा बनाया है। एक नौजवान अगर इरादा कर ले कि मुझे दीनदार बन के जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह को उसकी जवानी के ऊपर बहुत प्यार आता है, बहुत मोहब्बत आती है। आप हदीस सुन रहे थे ने असर बाद मगरिब बाद की मजलिस के अंदर कि कयामत के मैदान के अंदर अल्लाह ताला साया देंगे 7 किस्म के लोगों को, उसमें से एक वो नौजवान होगा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी की उठान अल्लाह की इबादत के अंदर हुई हो। आओ मेरे नौजवान दोस्तों, ये इरादे लेकर के आओ, गुनाह को छोड़ेंगे, कहो इंशाल्लाह। और आज के जमाने के जितने डेंजर गुनाह हैं, ये क्रिकेट है, ये फिल्म है, ये म्यूजिक है, ये इंटरनेट है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, ये सब को छोड़ो। अल्लाह कुरान में फरमाता है
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو آدمی بھی ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور من مانی زندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے
بھائیو من مانی زندگی مت گزارو اللہ جیسی چاہتے ہیں ایسی زندگی گزارو
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اور جنت ہی بن جائیں گے
اس لیے میں آپ سب کو بہت ریکویسٹ سے یہ بات کہتا ہوں کتابیں لاؤ بکس لاؤ اسلامی چوپڑیاں خرید کے لاؤ سیرت لاؤ حضور کی اور روز اس کا وانچن کرو اور جو ہے پورے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو کریں گے یہ سب کا
دیکھیے آج کل کے خطرناک بلا کے بارے میں بھی دو تین بات عرض کر دوں کیونکہ آپ لوگ میرے سامنے عورتوں میں جو کہنا تھا وہ تو الحمدللہ دوپہر میں کہہ دیا ابھی اپنے نوجوان دوستوں سے آج کل ایک عجیب کالج ہائی اسکول کی فیشن چلی ہے کہ بوائے فرینڈ ہر ایک کو چاہیے لڑکیوں کو بوائے فرینڈ اور لڑکوں کو چاہیے گرل فرینڈ اس کے بغیر تو جو ہے زندگی چلتی نہیں گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ یہ فرینڈ شپ نہیں ہے سوری یہ فرینڈ شپ نہیں ہے یہ حرام کام کرنے کا دروازہ ہے گیٹ وے آف دا حرام یہ حرام کام کا دروازہ ہے فرینڈ شپ کیسی پرائی لڑکیوں کے ساتھ پارکی لڑکیوں کے ساتھ فرینڈ شپ کیسی گرل فرینڈ رکھنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے اس لیے بھائی اپنے تو گرل فرینڈ کے چکر میں اپنے تو مسلمان تو شادی کرے نا اس کو لائف پارٹنر بنا لے جیون ساتھی بنا لے نکاح کرو شادی کرو اور اس کو جیون ساتھی بنا اور زندگی گزارو یہ گرل فرینڈ حرام ہے اب دیکھو میں آپ کو بات کرتا ہوں ہمارے بعض مسلمان نادانی کرتے ہیں میں تو بہت کھل کے جینے والا آدمی ہوں اور ہندو لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتے ہیں لفڑے کرتے ہندو لڑکیوں کے ساتھ پھر اس میں بہت سی مرتبہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں یہ کام دھیان سے سن لو گناہ ہے حرام ہے غلط ہے ناجائز ہے یہ کام کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جو کرے وہ غلط کرتا ہے اور پھر جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے پچھلے دنوں قصہ آیا تھا نا پیپر میں پھر پورا اسلام ہمارا بدنام ہوتا ہے پورا اسلام آج ہماری کتنی لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں ایمان سے نکل رہی ہیں مرتد بن رہی ہیں ان کا قصہ نہیں آئے گا لیکن اگر ایک مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی کو لے کے بھاگے گا تو پیپر میں ہائی لائٹ بدنام کون ہو رہا ہے مذہب بدنام ہو رہا ہے اسلام بدنام ہوتا ہے دین بدنام ہوتا ہے اور کان کھول کر کے سن لو میں نے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی یہ پرانے لوگ جانتے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے عالمی امیر تھے میں نے ان کی زبان سے نظام الدین مرکز پر یہ بات اپنے ان کانوں سے سنی خدا کو گواہ رکھ کے سناتا ہوں کہ اگر تمہاری کسی بات کی وجہ سے تمہارے کسی کام کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا تو تمہاری جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہے آج ہم نادانی کرتے ہیں اور اس نادانی سے پورے مذہب کو ہم چیلنج میں ڈال لیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آج پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا جو ہو رہا ہے اور ڈینجر ریئیکشن ہو رہا ہے اس لیے توبہ کرو استغفار کرو کسی ہندو لڑکی کو چھیڑنے کا نہیں, مسلمان لڑکی کو بھی نہیں چھیڑنے کا. اپنے تو پاک رہ کر کے ایک دم صاف ستھرا پاکیزہ کریکٹر اپنی زندگی کا لاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو ولی بن کر کے موت عطا فرمائیں گے. لوگ ہیں مرے ہوئے ولیوں کی قبر پہ جاتے ہیں, میں تو تم کو راستہ بتاتا ہوں زندہ کو ولی بننے کا, زندہ ولی بننے کا راستہ بتاتا ہوں. جو نوجوان 13 to 23 تیر سے لے کر 23 تک کی اپنی زندگی کی حفاظت کر لے, 13 کی عمر میں آیا وہاں سے لے کر 23 تک کی زندگی کی حفاظت کر لے, اللہ اس کو ایسی موت دیں گے کہ وہ اللہ کا ولی بن کر کے مرے گا. خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے سن لو, 13 سے لے کر 23 برس 10 سال کی زندگی کی حفاظت کر لو, اللہ تمہیں ولی بنا کر کے دنیا سے اٹھائیں گے, ولی بن کے موت آئے گی. اس لیے جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اسلامی کپڑے پہنو, یونیفارم اسلامی بناؤ اپنا. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے بدن کے اوپر اسلامی یونیفارم نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, اسکول میں ڈے آتے ہیں الگ الگ, روز ڈے نے بتاکا ڈے نے اللہ جانے کیسے کیسے ڈے آتے ہیں. ابھی ان لوگوں کے اندر بھی جو چنتک لوگ ہوتے ہیں, گجرات متر میں ایک آرٹیکل چل رہا تھا, جو پڑھنے کا وہ تو کوئی پڑھتا ہی نہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کہ یہ سب ڈے منانے سے باہر نکلو. یہ کیا کہ آج روز ڈے نے کل ویلنٹائن ڈے کا, یہ سب ڈے ڈے میں پڑے رہو گے نا تو کالج پوری ہونے کے بعد کچن میں روزانہ سنڈے رہے گا, روز سنڈے رہے گا کچن میں, یعنی پیسے ہی نہیں ہوں گے, بیکاری ہوگی تو کیا کھاؤ گے, کچن بند رہے گا اور ڈیلی کچن میں سنڈے ہو جائے گا پھر. اس لیے سب ڈیوے کے چکر میں نہیں بڑھنے کا. لیکن میں آپ کو ایک ڈے سکھلاتا ہوں کہ ویک میں کم سے کم ایک ڈے اسلامک یونیفارم ڈے مناؤ, کم سے کم ایک دن سے شروعات کرو. سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو کہ ہر جمعہ کو ہم اسلامی کپڑے پہنیں گے, کہو انشاءاللہ. یہ تو ابتدا میں, پھر دھیرے دھیرے 2 دن کرو, 3 دن کرو, 4 دن کرو, 5 دن کرو, کم سے کم 1 دن کا تو وعدہ کرو کہ اسلامی کپڑے انشاءاللہ ہم پہنیں. سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آگے میاں لوگوں نے جمعہ ہے, سب کو پتا چلنا چاہیے. دیکھو وہ اسکول کے جو کلر ہوتے ہیں اس کا ویروھ کرنے کے لیے میں نہیں کہتا ہوں, وہ ان کا جو کلر ہو اس کلر میں اپنے کفنی جار نہیں سلا سکتے, جو بھی کلر ہو ان کا اس کلر پر کفنی جار سلاؤ اور پھر وہ کلر کے کفنی جار پہن کے جاؤ آپ, اور جا کر کے وہاں اچھے اخلاق سے زندگی گزارا. ہمارے سرکل میں ایک نوجوان لڑکا ہے, اس نے خود اپنی کارگزاری میں مجھے سنائی کہ میں نے کفنی جار سلایا کالج, سورج کی کالج کی بات کر رہا, کالج کے قانون کے مطابق. پھر وہ اماما باندھتا تھا اور ماشاء اللہ اسی حالت میں کالج میں جاوے, تو اس کی کلاس ٹیچر وہ مسلمان تو نہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی تھی وہ, اس لیے کہ بعض لوگ ہے خود کو مسلمان سمجھتے لیکن مسلمان نہیں ہے, وہ کاسٹ میں سے اس کی کلاس ٹیچر تھی سیاسی ہو. تو اس نے آبجیکشن لیا کہ کپنی جار اور یہ اماما پہن کے کالج میں آتا ہے, کل سے ایسے کپڑے نہیں پہننے کے. تو سنو دھیان سے اس بات کو, وہ لڑکا اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ رہتا تھا کہ جب کلاس ٹیچر نے اس پر آبجیکشن لیا تو اس کی کلاس کے ہندو لڑکے پرنسپال کے پاس گئے اور پرنسپال کو جا کر کے کہا یہ ہمارا فرینڈ, وہ کالج کے کلر کو تو فالو کرتا ہے, کالج کا جو قانون ہے بس وہ اسٹائل کفنی دار کے پہن دے, اس میں ہماری کلاس ٹیچر ویروھ کرتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ کلاس ٹیچر کا ویروھ غلط ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہماری فرینڈ کو کفنی دار اور اماما باندھ کے آنے سے روکے. ہندو لڑکوں نے جا کر پرنسپال کے سامنے اس کی فیور میں اور کلاس ٹیچر کے ویروھ کے اندر فریاد کی. آج اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہم کالجوں میں جا کر اچھے اخلاق سے رہے, بلکہ آج کے حالات یہ ہیں کہ ہر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے, آج کے حالات کا تقاضا ہے. کہ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے ہر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہ رہے, ان کے ساتھ ویوہار میں, لین دین میں ایک دم کلیئر اور صاف ستھرے رہ رہے. اللہ ہم سب کو ایسی پاکیزہ دینداری کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی, دوسری مجلسوں میں کہی گئی, اس کے اوپر آپ لوگ عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایک دن کا پروگرام بہت اچھا رہا, جتنی باتیں آپ کو کہی گئی آپ دوسروں تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا بھی ہے, آپ کھانا کھا کر جائیں, سب کی دعوت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.